Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivajakacharya Stotra Sat Srimat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Sanstapakacharya Srila Prabhupada Ki Namacharya Ridas Thakur Ki Jai Prem Siko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kundu Radha Kundu Giri Govardhan Ki Jai Raja Bhumi Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dwarka Dham Ki Jai Mayapur Navadip Dham Ki Jai Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Bhagavad Dharma Ki Jai Harinam Sankirtan ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Gaura Premanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasa tato jayamudiraye nastaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimad Bhagavatam Skand Chota Adhyay 29 Shlok number 39 or 40 Yatra Bhagavata Rajan Sadhava Vishada Ashaya Bhagavat Guna Anukatana Shravana Vyagra Chetasa Yatra Bhagavata Rajan Sadhava Vishada Ashaya Bhagavata Gunanukatana Shravanavyagrata Chetasa Yatra Bhagavata Rajan Sadhavo Vishadashaya Bhagavata Gunanukatana Shravanavyagrata Chetasa Yatra Bhagavata Rajan Sadhavo Vishadashaya Bhagavata Gunanukatana Shravana Vyagra Chetasa Yatra Bhagavata Rajan Sadhavo Vishadashaya Bhagavat Gunanukatana Shravana Vaigra Chetasa Yatra Bhagavata Rajan Sadhavo Vishadashaya Gunanukatana Yatra Jaha Bhagavata महान भक्तगण राजन, हे राजा, साधवः साधु पुरुष, विशद आशया विशाल हृदय वाले भगवत श्री भगवान के गुण अर्थात गुण अनुकथन नियमित रूप से पाठ करना, श्रवण सुनना व्यग्र उत्सुक चेतसहा जिसकी चेतना तो 40 श्लोक भी हैं, मैं सिर्फ उच्चार करता हूँ, फिर हम अनुवाद पढ़ेंगे। तस्मिन् महान् मुकरिता मधुभिचरित्रा पीयूषशेषा सरिता परिता श्रवंती तयेपि बन्त्यवितृष्यो नृपगादकर्णे तान्ना स्पृशन्ति यसनात्रिद्वयशोकमोहा। इस दोनों श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद द्वारा। हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते हुए रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को सरिता के प्रवाह के समान अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वो जीवन की आवश्यकताएं भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण चेतना का अनुशूलन वही संभव है जहाँ महान भक्त एक साथ रहते हैं और श्री भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में अनेक भक्त श्री भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। यदि ऐसे स्थान में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल पाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन अत्यंत सरल हो जाता है। जब मनुष्य श्री भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है तथा मनुष्य देहात्म बुद्धि में होता है तो उसे भूख प्यास भय शोक तथा मोह सताते हैं। किंतु यदि वो श्री भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है तो वह देहात्म बुद्धि से आगे निकल जाता है। भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा पद का अर्थ है ऐसा स्थान खोजने हेतु सदैव उत्सुक रहना जहाँ श्री भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन होता हो। इस श्लोक में यह पद महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी ऐसे स्थान में जाने हेतु सदैव उत्सुक रहता है जहाँ व्यापार होता हो। इसी प्रकार एक भक्त मुक्त भक्तों के मुकारविंद से सुनने हेतु उत्सुक रहता है और जो ही उसे मुक्त भक्तों से श्री भगवान की महिमा सुनने को मिलती है वह तुरंत कृष्ण चेतना से पूरित हो उठता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में 25वां अध्याय में 25 श्लोक में अन्यत्र भी हुई है। सताम प्रसंगान मनोवीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण सायनाकता तज्जोशनादास अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की विवेचना कानों तथा हृदय को अत्यंत सुखद तथा संतुष्ट करने वाली है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है, फिर वह मुक्त हो जाता है और उसकी आसक्ति स्थिर हो जाती है तत्पश्चात वास्तविक भक्ति तथा भक्तिमय सेवा प्रारंभ होती है। शुद्ध भक्तों की संगति से मनुष्य श्री भगवान के गुणों को सुनने और कीर्तन करने में अनुरक्त होता है। इस प्रकार वह कृष्ण चेतना का अनुशीलन कर सकता है और अनुशीलन की प्रगति के साथ ही श्री भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती जाती है और वो शीघ्र ही पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य है उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं भोजन नींद मैथुन सुरक्षा से विचलित नहीं होता। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुतातां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्राणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंध जो अध्याय का शीर्षक है श्री नारद मुनि तथा राजा प्राचीन परिषद के मध्य वार्तालाप। तो आज के इस दो श्लोकों में आपने सुना कि किस तरह से भगवान के कथा एक सही शुद्ध जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है उस व्यक्ति से जब सुनते हैं उनकी कथा गुण तो उसका धीरे धीरे अचानक तो नहीं होता लेकिन ये निश्चित है कि वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है और उसका परिणाम क्या होता है यही शरीर में रहते हुए भूख प्यास हाँ बुढ़ापा मृत्यु मोह डर यही तो पीड़ा है ना तो इससे मुक्त हो जाते। तो जो हमारे अतिथि गण हैं यहाँ पे जो पहली बार काकुत कथा थोड़ा ये संदर्भ के बारे में बताते हैं कि ये कथा है प्राचीनी बरिश नाम का एक राजा। वैसे वो धार्मिक था, कोई ऐसे साधारण राजा नहीं था। लेकिन धार्मिक तो जरूर था। देखो ये भी जरूरी है कि हमारे देश में धार्मिक लोगों की कमी नहीं है, है ना? मंदिर जाना, तीर्थ स्थान जाना, उत्सव में भाग लेना, व्रत का पालन करना, ऐसे नहीं है। लेकिन अगर सही समझ नहीं हो तो उसका जो परिणाम है वो सही नहीं होगा। इसका अर्थ है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि इसका संघर्ष से मुक्त हो जाए, लेकिन हम अगर सही समझकर कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका परिणाम यह होगा कि वो संघर्ष का फल एक और एक संघर्ष होगा, आप संघर्ष से बाहर नहीं आएंगे। तो इस स्थिति में था प्राचीनी बरिषद, और नारद मुनि कौन है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता ना। कभी देखता है, अरे ये तो श्रद्धालु है, धार्मिक है, लेकिन कर्मकांडी चीजों में लगा है कि ऐसे कुछ प्राप्त होगा, भौतिक चीजें प्राप्त होगी, जो भौतिक चीजों के क्लेशों से वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि वो मुक्त नहीं होगा, तो इसलिए उनको ये बताना था। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं, सुनो राजन, जब तक तुम ऐसे स्थान में नहीं जाओगे, आज के श्लोक में सुना ना, जहां पे ऐसे लोग बैठे हैं और भगवान की कथा हो रही है, हाँ, भगवान गुणानुवर्तनम, ऐसे और किस तरह से तुम सुनोगे? व्यग्र, ऐसा नहीं कि जैसे अभी हम भी सुन रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, अभी ये लोग आ गए हैं तो ध्यान उधर गया, उधर कुछ लाइट गया तो उधर गया, तो ये व्याघ्र नहीं है। व्याघ्र कौन था भागवत में? भागवत की शुरुआत कहां से? परीक्षित महाराज व्याघ्र। सुनने में तो उनको लग रहा था कि ये ऐसे दिल खोल के चेतना, ऐसे एकदम ऐसे जीने मरने का सवाल है, तो उससे ऐसे ये चेतसा हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो जो 40वें श्लोक में बताया गया, तो ये शुड वी वेट टिल दे गो? देखो कथा चल रही है, तो ये एक सिस्टम होता है कि लोगों को मालूम रहे और वो लोग यहाँ से जाए, अगर कथा में भाग नहीं लेना है तो उनको बाहर जाना है, ठीक है? सिक्योरिटी तो इसके पिछले कुछ श्लोकों में ये एक अच्छा एक यहाँ पे यही नारद मुनि बता रहे। देखो नारद मुनि को सब उनको समझाना पड़ा, क्या हो गया? प्राचीन बरिषद को समझाने के लिए नारद मुनि ने बहुत एक लंबा रास्ता लिया। उनको ऐसे एक कथा बोलने लगे, एक राजा था पुरंजन, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन सब सुनने के बाद प्राचीन बरिषद को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने इस अध्याय में उनसे पूछा, नारद मुनि ठीक है लेकिन इसका सिद्धांत क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या है, आपने सब बताया मुझे लेकिन मैं थोड़ा सा समझ में आया इसलिए तो पूछा ना कि मैं समझना चाहता हूँ क्या है। तो तभी वो बताते हैं कि ये जो मैंने बताया तुम्हें पुरंजन है, वो जीव शरीर और हम भोग प्रवृत्ति में कार्य करते हैं, उससे बंधन कैसे होता है और वो बंधन और बढ़ते जाता है, तुम्हें लगता है ना मैं संघर्ष करके बाहर आऊँगा लेकिन बंधन और बढ़ते जाता है, और इसी नहीं देह त्याग करने के बाद आत्मा और एक शरीर लेता है और सब कुछ ये विवरण करके यहाँ पे एक विशेष बताते हैं। ऐसे बताते बताते वो एक 32वां श्लोक में एक अच्छा बताते हैं नारद मुनि उनको, ताकि हम समझ ले कि हमारा निजी जीवन कैसे हो। तो यहाँ बताएं कि सारे जीव भाग्य अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों का प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं, तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। ये उनको बताते हैं। तो ये प्राचीन परिषद सुन रहे हैं, तो हमारे समझ के लिए अगर हम ये जो बद्ध स्थिति है, अभी ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अरे मैं कहाँ बद्ध हूँ, मैं तो हूँ ना, स्वतंत्रता है मेरे में। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब बद्ध हैं, और बद्ध स्थिति में जो भी संघर्ष करते हैं अज्ञान में, अगर नहीं मालूम होते, जैसे जो कुछ भी है, समझो अभी साइंटिस्ट लोग टेक्नोलॉजी ये एक संघर्ष कर रहे हैं ना, क्या कि इंसानों का आदमियों का जीवन सुखमय रहे। लेकिन जो कुछ भी वो लोग सोल्यूशन ले आते हैं वो एक बंधन का और कारण बन जाए। तो इसको समझाने के लिए हमारे आचार्य गण एक अच्छा उदाहरण देते हैं। ये जो मकड़ी का जाल होता है ना, हाँ, उसमें जब एक मक्खी फंस जाती है, तो जैसे फंस जाती है मक्खी क्या करती है, अपने छुटकारा के लिए संघर्ष करती है, प्रयास तो करती है क्योंकि उसे मुक्त होना है। लेकिन उसके प्रयास में क्या होता क्या है, और वो फंस जाती है और बद्ध हो जाती है। तो यानी जितना संघर्ष करो उसना, तो ये बताना चाहती है नारद मुनि प्राचीनी भरिषित को। तुम ये मत सोचना कि मैं तो सब कैसे कार्य करो, लेकिन तुम सिर्फ बद्ध होते जाओगे, क्योंकि उनका कार्य जो था धार्मिक था लेकिन कर्मकांडी था। वो पशुओं की क्या बोलते, यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, ये कर रहे थे, था तो वैदिक नियमों के तरह ही था, लेकिन उसको इस बद्ध स्थिति से मुक्त नहीं करता था। तो ये एक सुनने जैसा है। तो ये विशेषकर हमारे प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, अच्छा हमारे को समझाने के लिए, कि किस तरह से अपने पिता को, जब वो पिताजी से मिलते हैं तो आप सब जानते हैं कि पिताजी इनसे पूछ रहे हैं क्या सीखा है। लेकिन प्रहलाद तो इतने क्या बोलते हैं, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस था, कभी सच को बोलने में डरते ही नहीं थे। तो उसमें से एक ऐसा श्लोक है 7वें स्कंद में आता है, तो वो अपने पिता को कहते हैं, नथे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशयाये बहिरर्थ मानिना अंदायतंदे रूपनीयमानास ते पिशा तंत्रम उरुधाम निबद्धा। प्रहलाद कहते हैं, सामान्य लोगों को अपना हित कहाँ पे है, एक स्वार्थ तो सबका होता है ना, मेरा अच्छा क्या है, लेकिन सच्चा हित क्या है मालूम नहीं है। सच्चा हित है कि विष्णु की पूरी आश्रय लेना। आज के दिन हम बोलेंगे विष्णु की आश्रय लेना, बोलेंगे ये तो बहुत ही पुराने ख्यालात का है, लेकिन सच यही है कि यही तुम्हारी स्वार्थ है। ये अपने पिता को बोल रहे हैं, और पिताजी कौन थे उसके, हाँ, तीनों पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने वश में कर लिया था। और आगे बताते हैं वो कि दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, लोगों को अज्ञान में ऐसा लगा है कि बाहर के जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। अर्थ मानिना अर्थात धन, प्रतिष्ठा, घर, वो ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे, लेकिन ये क्या है, दुराशया है। ये दुराशा, ये आशा इनका कभी नहीं होगा, ये झूठा है, ये कभी इसे कभी प्रसन्न नहीं होगे, प्रहलाद बोल रहे हैं। हाँ, और तीसरा पंक्ति में बोल रहे हैं, वो तो ठीक है लेकिन जो नेता लोग हैं वो भी बंदे हैं, और वो भी बस इसी में लगे हैं सुलझाने में, इसी कार्य में लगे हुए कि कैसे इसको सुलझाएं। तो जिसका मतलब जो बंदे हैं तो वो भी अज्ञानी, अज्ञान का मतलब है अंधा है, तो नेता अंधा है उसको फॉलो करने वाले अंधा है, तो अंधे के पीछे अंधा जा रहा है तो कहाँ पहुंचेगा वो, खड्डे में गिरेगा ना। तो ऐसे बता रहे कि ये प्रकृति के जो नियम है, ते पिशा तंत्रम यानी प्रकृति नियम, तंत्रम यानी नियम, ये इस तरह उरु, उरु यानी पेट, हाँ भद, उरु यानी रस्सी, आई मीन दामनी यानी रस्सी, रस्सी से बंधा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के हम क्या उनके पीछे हम जाएंगे तो हमारे भी स्थिति हुई होगी। तो ये एक तरह का एक माया जाल बिछा हुआ है, लगता है सब कुछ सही लग रहा है लेकिन ये माया जाल है। जिस तरह से वो मकड़ी का उदाहरण दिया, ऐसे हम पूरे लाइफ हमारे संघर्ष में चले जाता है, लगता है कि अरे एक बार मेरा प्रॉब्लम ही हो जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। इसका मतलब है सर में एक बोझ पड़ा है और हम चाहते हैं कि इसको बोझ को उतार दे, लेकिन हम कैसे सुलझा रहे हैं उसे, यहाँ से उठाकर खंधे में रखते हैं, अभी भी तो शरीर में ही है। तो ये है प्रहलाद महाराज की हमारे लिए एक संदेश कि किस तरह से जब तक हम, ये प्राचीनी परिषद को नारद मुनि बता रहे हैं। तो इसके लिए अभी प्रभुपाद तात्पर्य में एक और एक ऐसा अच्छा श्लोक ले आते हैं, तो वो तीसरे स्कंद का है जहाँ पे कपिल देव जो स्वयं भगवान थे अपने माँ को बता रहे हैं, देवावती को। आपने वो श्लोक सुना ना, वो हाँ, सताम प्रसंगम मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायनाकता तद जोशनादस्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। अनुक्रम यानि सिस्टम, एक के बाद क्या होगा, श्रद्धा जाग जाएगी, आकर्षण बढ़ जाएगा और भक्ति जाग जाएगी। कैसे, सथाम प्रसंगान, ऐसे लोगों के संग में। तो अभी एक सवाल आएगा कि आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कि कहाँ से सुनोगे, किसके मुख से सुनोगे। अरे भागवत कथा ही तो चल रही है, कितने होते हैं, भागवत सप्ताह होती है, भागवत कथा होती है, कई बार बताया जाता है कि यहाँ से नहीं सुनना चाहिए। अरे क्या हो गया, इतना रोमांचक कथा है, रामायण से हो रहा है, महाभारत से हो रहा है, भागवत से हो रहा है, गीता से हो रहा है, तो अच्छा ही है ना। लेकिन यहाँ पे कपिल बता रहे हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वो आपके हित के लिए है। अब कैसे समझेंगे हम, सो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जो दूध होता है बहुत ही पौष्टिक होता है ना दूध, जो भी दूध पिएगा उसको निश्चित, हम तो वैदिक में ज्ञान ये बताता है कि जो गाय का दूध होता है उससे ऐसे विषयों को समझने के लिए बुद्धि, आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, स्वस्थ रहता है, तो दूध बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उस दूध को सर्प ने डसा है, तो सर्प डसने के बाद भी दूध दूध ही लग रहा है ना, कुछ आपको अंतर लग रहा है, अरे भी तो दूध है, दूध है, लेकिन आप पिएगे तो क्या होगा, तो दूध के साथ वो विष चला जाएगा। तो हम कैसे समझे कि ऐसे कथा, आज के जो खास विशेष श्लोक यही बता रहे हैं ना, कहाँ से सुनना है। ऐसे जो शुद्ध भक्त है तो उनके हृदय से जब सुनते समय वो सही तरह से पहुँचता है, नहीं तो फिर वो हानिकारक हो सकता है। तो ज़्यादातर भागवत कथा होती है हमारे देश में खास करके, वो एक विधि बोल के किया जाता है कि कुछ पुण्य मिलेगा, कोई परिवार लोग बोलते हैं हम इतना लाख रुपया लगा देंगे, किसी को बुला लेते हैं और वो भी जो कथा कर रहा है वो भी पैसे के लिए कर रहा है। हाँ, तो हृदय में करने वाले की हेतु भी कुछ और ही है, करता भी वही हेतु का है, और उसमें एक बहुत कुछ रोमांचक होता है, बहुत म्यूजिक होते हैं और सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हृदय में भगवान के लिए अगर थोड़ा भक्ति थी तो वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि जो वाणी है, वाणी के साथ साथ उसकी चेतना भी आती है। हम आहार के बारे में तो जानते हैं ना, जो बनाता है आहार उसके साथ उसकी चेतना भी आती है। इसलिए आप किससे लेते हैं ये बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। तो ये या तो वो भौतिकवादी नहीं है, तो हो सकता है कि वो मायावादी है, क्योंकि मायावादी आपको समझ में नहीं आता है कि अभी मायावादी को, अरे मायावादी से क्या हो गया, क्या बुरा है क्या मायावादी क्या, अरे हम तो सबकी इज्जत करते हैं कुछ नहीं। लेकिन मायावादी लोग का सोच ऐसा है कि भगवान के कोई आकार नहीं है, निराकार है, तो अगर ऐसा है तो फिर सेवा का तो सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आकार ही नहीं है कुछ। और सबसे बड़ा अंतिम में क्या क्या बोलेंगे, वो हृदय में क्या है, हम भी भगवान है, हर एक व्यक्ति यहाँ भगवान है, तो हो गया ना। तो फिर अगर भक्ति का थोड़ा भी आपका रह गया था वो भी, लेकिन सुनने के लिए भागवत कथा जैसे ही होता है, बहुत सुंदर सुनने के लिए, लेकिन उसमें डस गया है उनकी जो प्रवृत्ति है। तो ये हम बार बार सुनते हैं, लेकिन कई बार लगता है अरे इसमें क्या हो गया, अरे अच्छा लगा सुनने में। कई बार बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे वक्ता बोलते हैं, हमें नहीं मालूम, हो सकते कोई शुद्ध भक्त हो, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो फिर थोड़ा संभालना चाहिए। कि ये इस तरह से ये वाणी के बारे में बताया गया है कि एक हमारे लिए कैसे समझे, हमने अभी जो कुछ बताया उसको हम समझे कैसे। जैसे प्रभु जी केशवानंद प्रभु इंजीनियर हैं, आप जानते हैं कि कोई साउंड वाणी को ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमीटर की ज़रूरत, और ट्रांसमीटर उसको रोकता है, जो भी उसकी माध्यम होती है अगर वो रेजिस्टेंस देता है तो जाएगी नहीं। बहुत एकदम वो मटेरियल इतना परफेक्ट होना चाहिए कि साउंड पूरा ऐसे चला जाए। तो इसी तरह से भगवान की वाणी बहुत शुद्ध है, जो भागवत में लिखा है वो शुद्ध है, लेकिन किसके माध्यम से आता है वो उसको रोक सकता है या कुछ मिला सकता है या अपने प्रवृत्ति को डाल सकता है और उसके बाद वो पहुँचता है। तो जो सुना तो सही है लेकिन चेतना में हो। दूसरा उदाहरण है, अभी तो रेडियो नहीं है, हाँ अभी तो रेडियो का जमाना तो चला गया, जो ट्रांजिस्टर होते थे ना, ट्रांजिस्टर आप लगाते हैं, आपको लगाना क्या है, स्टेशन। लेकिन अगर उस स्टेशन क्यों लगाना चाहते, क्योंकि सिग्नल को पकड़ना है, लेकिन अगर सिग्नल बराबर से नहीं पकड़ा तो क्या आता है, खरखर खरखर, जो आवाज़ नहीं आना चाहिए वो आता है, हाँ, और गलत सिग्नल भी आ सकते हैं, गलत सिग्नल भी आते हैं ना, कभी लगाना था ये सिग्नल लेकिन दूसरा भी आवाज़ आ रहा है। तो इस तरह से आज के इस विषय में हम समझे कि कथा सुनते समय ये भी ज़रूरी है कि हम किस परंपरा से सुन रहे हैं। ये आज अपने नारद मुनि प्राचीनी भविष्यत को ये बता रहे हैं कि कैसे हमें बहुत, तो एक ये समझना बहुत मुश्किल है, हम ऑफकोर्स गलतियां हो सकती हैं हमारे से कि कैसे समझिए। अब अगर कोई कथा चल रहा है तो कथा के जैसा चल रहा है तो हम बोलेंगे अरे कैसे, जब तक मालूम नहीं है तब तक, या तो फिर पूछ सकते हैं किसी से या कोई भक्त है, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर जो वैष्णव है वो बोलेगा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं दास हूँ भगवान का और भगवान का सेवा करना है, बस भगवान का सेवा तो मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता, भगवान के दासों का दास उनके द्वारा ही मैं पहुँच सकता हूँ, और जीवन का ये लक्ष्य है भगवान की शरणागति, हाँ तो फिर तो लगता है। लेकिन और कुछ लगा, अहम ब्रह्मास्मि या कुछ और ऐसे विषय आ गया, तो फिर हम वहाँ बैठकर सुन रहे हैं, कथा अच्छा भी लग रहा है, तो समझना कि आपके भक्ति की जो कुछ भी एक प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। डरावना है ना, लेकिन शास्त्र में बताया ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु के इस लीला में भी एक आता है, हमारे जो षड गोस्वामी हैं उसमें से एक गोस्वामी है रघुनाथ भट्ट, हाँ वो तपन मिश्रा के पुत्र थे। तो उन्होंने जब बचपन में चैतन्य महाप्रभु का संग हो गया तो उन्होंने उनको कहा अपने माता पिता की सेवा करो, उसके बाद तुम सही समय पे आ जाना। तो फिर वो गोस्वामी हो गए, उनका नाम हो गया रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो फिर वो जा रहे थे वाराणसी से पुरी, तो उनके साथ में और एक भक्त आ गए, तो बहुत नम्र थे, निरंतर भगवान का नाम ले रहे थे, राम 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 राम, सेवा कर रहे थे, कुठा रहे थे, इनकी बहुत सेवा कर, बहुत नम्र से बहुत, और पूरा दिन भगवान के नाम में लगे हुए थे, कुछ ऐसे वैसे विचार कुछ नहीं है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को लगा यार बहुत ही अच्छे भक्त हैं, तो उनके संग में वो गए 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 और पहुंचे पुरी। जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की तरफ देखा, लेकिन उनकी तरफ देखा ही नहीं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे, ये तो पूरे मेरे प्रवास में मैंने देखा इतना अच्छा भक्ति है। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये सामने बोल रहा है लेकिन हृदय में विचार किया है, मैं भगवान से मुक्ति का मतलब है, मुक्त होने के बाद भगवान से मैं लीन हो जाऊंगा, एक हो जाऊंगा। तो ये थे रामदास विप्र नाम का एक एक कथा, सिर्फ समझने के लिए कि हमारे बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सबको शक से देखते रहे, ये कौन है, ये कौन है बाबा। भक्तों के संग में है, परंपरा में सीख रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सब लोग भक्ति के लिए हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। हाँ, हर एक अपना अपना थोड़ा विचार अलग अलग होता है, वो तो होता ही है इसमें, लेकिन बाहर ऐसे कहीं भी, तो इसके लिए कथा सुनना भी, कथा सुनना निश्चित, आज का जो तो पूरा इसमें यही बताया है कि सिर्फ कथा सुनने से, लेकिन एक चेतावनी दिया है कि कहाँ से सुन रहे, कैसे सुन रहे। तो ये नारद मुनि का यही बता रहे कि तुम सिर्फ कथा सुनो, कथा सुनने से तुम्हारे ये जो देहात्म बुद्धि से तुम, यानी खास करके भूख प्यास इसकी, तो ये तो सब सब लोग जानते हैं ना, भूख और प्यास की कैसे होती है, वेग बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ हाँ, इस और वैसे और एक वेग है, वो है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हाँ, ये जीवा का वेग, अगर किसी को कहो कि आज तुम्हें 6 घंटा पानी नहीं पीना है, और उसको या तो किसी को कहो कि आधा घंटा तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, चुप बैठना है, कौन सा कठिन लग रहा है आपको? हाँ, दूसरा वाला, क्योंकि ये बोलने का वेग, तो बोलना कोई बुरा नहीं है, अभी तो हम कुछ चर्चा कर रहे हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन जैसे भक्तों के संग में नहीं है, बोलने के लिए बहुत सारे विषय है, तो क्या हो जाता है, प्रवृत्ति है बोलने की। तो इसलिए जो बोलने की प्रवृत्ति है, सुनने की प्रवृत्ति है, बाहर की दुनिया में जो हो रहा है सेम वैसा ही है, सिर्फ विषय, विषय क्या है उसके ऊपर कि आप बद्ध होते जाओगे या बद्ध स्थिति से आप ऊपर आओगे। जब भगवान की महिमा गुण लीला हैं, जब उनको सुनते हैं सही जगह से, तो हमें मुक्त कर देता है, और वही सुनना बोलना वो हमें, जैसे वो मक्खी मकड़ी जो जाल बिछा हुआ है मकड़ी ने, उसमें फंस के वो खुद संघर्ष कर रहा है, क्योंकि बोलने की प्रवृत्ति और सुनने की प्रवृत्ति इतना तीव्र है। तब तो आजकल तो आप जानते हैं कि फेसबुक और ये सोशल मीडिया में, हाँ, सब अपने बारे में सुनना चाहते हैं, कितने लाइक्स है, क्या है, वो है, ये है, तो ये प्रवृत्ति, लेकिन सिर्फ मनुष्य जीवन का जो क्लेश है उसको कम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही एक गुह्य विषय है, ये गंभीर विषय है कि सिर्फ करना है, सुनना ही है, बोलना ही है, लेकिन विषय क्या है। इसलिए रूप गोस्वामी बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं, अरे क्या करें, लेकिन टेस्ट नहीं है ना सुनने के लिए, और बोलने के लिए भी टेस्ट नहीं है, दूसरा टेस्ट बहुत है, क्या करें, रुचि नहीं है, सही है ना, होता है ना मेरे भक्तों के बीच में भी, कभी कभी हम लोग कथा बोलते समय कुछ ऐसा विषय आ गया, कुछ पॉलिटिकल विषय, कुछ गंभीर ऐसा कुछ, सब लोग इंटरेस्ट लेने स्टार्ट करते,
अरे 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 वैसा नहीं, अपना अपना फिर मत देने लगते, अरे ये टेस्ट कहाँ से आया, क्योंकि उसमें टेस्ट है लेकिन इसमें टेस्ट नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी एक अच्छा उदाहरण देते हैं हमारे लिए, सांता हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए। जैसे पीलिया बीमारी होती है, हाँ किसी को नहीं हुआ है तो आप दूसरों को देखा होगा, इसको जॉन्डिस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक आयुर्वेदिक इलाज ऐसा है कि गन्ने का रस को पिलाओ, और जब वो पीलिया हुआ हुआ जो मरीज है गन्ने का रस पीता है, उसको मीठा लगता है, कड़वा लगता है, तो फिर क्या वो कड़वा लगता है इसलिए वो नहीं पिए, तो उसकी बीमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो पिएगा, कड़वा है फिर भी पिएगा, फिर भी पिएगा, फिर भी पिएगा, क्या होते जाएगा, जैसे उसका पीलिया कम होते जाएगा, उसको गन्ने के रस में वो स्वाद फिर आएगा। गन्ने के रस में कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो पहले कड़वी थी क्या गन्ने की रस? तो इसी तरह से हमारी जो एक बीमारी है, कितने जन्मों से हमने ऐसे विषयों पे लगाव रखे रखा है, ऐसे विषयों को सुनना, ऐसे विषयों को बोलना, कितने करोड़ों जन्म हो गए, मनुष्य शरीर मिल गया है, लेकिन अभी भी उसी विषयों को फिर से दोहराएंगे तो ये जो भव सागर है, जन्म मृत्यु का सागर, उसी में फिर से शरीर लेना, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। तो विषय ऐसा है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, और ऐसे आज के इस कथा में बताया गया है कि कैसे हम इसको सुलझा सकते हैं। तो ये हमारे बहुत बड़ा भाग्य है कि प्रभुपाद ने ऐसे विषयों को, विशेषकर भागवत तो आप जानते हैं कैसे उन्होंने अनुवाद किया है, रात रात को बैठकर 2 घंटा भी नहीं सोते थे, तो फिर किसके लिए किया उन्होंने, हमारे लिए। तो इसलिए अगर ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक मिलते हुए भी, हाँ तो मिल रहा है तो फिर, लेकिन भक्तों के संग में सुनने का एक लाभ और ही होता है। ऑफकोर्स भक्तों के संग नहीं है तो घर में बैठ के कम से कम आधा घंटा एक निकाल कर रोज पढ़ना, हाँ हरिनाम जाप तो ज़रूर करना चाहिए, उसके साथ ये भी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर भक्तों का संग मिल रहा है और ऐसा वातावरण मिल रहा है, जैसे अभी जिस स्थान में हम लोग बैठे हैं अभी, ये कोई साधारण स्थान है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरे साल में इतने उत्सव होते हैं, ऐसे भक्त लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो कुछ उनको कुछ पगार नहीं दिया जाता है, इसका मतलब वो हाँ निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे सेवा हो रही है, उत्सव हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंगल आरती हो रही है, संध्या आरती हो रही है, तो जगह का प्रभाव कैसे रहेगा? तो ऐसे जगह पे बैठ के सुनना उसमें तो, लेकिन ऐसा अवसर हर एक को हर समय नहीं मिल सकता है, लेकिन उसका सार समझना है कि कैसे कथा सुनना चाहिए। तो ये प्रभुपाद की असीम कृपा है हम सब पर कि उन्होंने बहुत प्रयास कर कर इसे, और ये गीता जयंती का उत्सव है, भागवत कथा का वितरण हो रहा है, भगवत गीता का वितरण हो रहा है, लेकिन उसको जैसे एज इट इज़ लिखा है इंग्लिश में, ऐसा नहीं कि घर में जाके एज इट इज़ रख दे, अगर एज इट इज़ रखने में भी बहुत फ़ायदा है, कहीं ना कहीं वो कोई और पढ़ लेगा और उसका होगा, जिसने खरीदा है वो नहीं पढ़ेगा लेकिन दूसरा कोई पढ़ेगा, ऐसा कितने कथाएँ हैं प्रभुपाद के इस आंदोलन में, ऐसे कहीं ऐसे कथाएँ। तो ये प्रभुपाद ने, और विशेषकर उन्होंने कृष्ण के बारे में जो 10वें स्कंद में आता है, लेकिन वो जब भागवत अनुवाद करते थे अमेरिका में तभी तो 3रा स्कंद 4था स्कंद चल रहा था, लेकिन सीधा वो 10वें स्कंद में गए। तो सच तो ये है कि 10वें स्कंद में सीधा नहीं जाना चाहिए आपको, हाँ नियम अनुसार, क्योंकि भगवान की कई लीलाएँ ऐसी होती हैं कि आप एकदम विचलित हो जाएगी, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उतने साल तक जीऊंगा नहीं तो रह जाएगा, इसलिए उन्होंने कृष्णा बुक तुरंत जल्दी ले आया, उसका अनुवाद किया, लेकिन उसको एक अलग रूप दिया उनको। फिर जब समय हुआ फिर उन्होंने 10वां स्कंद का भी उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया, लेकिन कृष्णा बुक जो आ गया, क्योंकि भगवान की जो गुण, उनकी लीला, उनकी महिमा, ये सिर्फ सुनने से आप देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं, जो और कोई कार्य से भी नहीं हो सकता। कर्मकांड से तो निश्चित नहीं हो सकता है, वो तो सिर्फ आपको और बद्ध कर देगा। लेकिन ज्ञान मार्ग या अष्टांग जो ध्यान मार्ग में भी वो जब तक निराकार भाव में रहेगा तो फिर वो सिर्फ एक स्तर तक ही। लेकिन भगवान के डायरेक्टली रूप के बारे में, गुण के बारे में, लीला के बारे में सुनना, एक भक्ति रति प्रेम जाग जाता है तो बहुत ही स्वाभाविक है कि वो जो भी कार्य करेगा उस प्रेम से करेगा। तो जब वो करेगा तो उसकी चेतना, आज का जो श्लोक जो लिखा है, वो पूरी तरह से वो चेतना को शुद्ध करके, हाँ, यत्र भागवत राजन साधो विशदाशया भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र। व्यग्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यग्र ऐसे नहीं कि सुन रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, सोच रहा है कि प्रसाद में क्या है, आज शाम को उधर जाना है, कल ऐसे हुआ था, लेकिन बैठे हैं यहाँ पे। व्यग्र का मतलब है बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और ऐसे करते हैं तो वो अमृत की तरह हो। जैसे यहाँ पे बताया है ना कि जैसे नदी का प्रवाह होता है अमृत की तरह बह रहा है, तो कौन पानी पिएगा उसे, कौन सा व्यक्ति पिएगा? जो बहुत प्यासा है। जो प्यासा नहीं है वो नहीं पिएगा। अगर हमें मालूम है कि आज ये क्लेश से बहुत ही हम परेशान हैं, तो प्यासा है, तो फिर यही दवा है, मुझे लेना है, कड़वा लग रहा है लेकिन मैं लेते रहूंगा। तो इस व्यग्र से लेता तो उसकी चेतना, जब कि कृष्ण चेतना उसकी बढ़ जाती है तो बाकी सब आकर्षण धीरे धीरे, दूसरे जो जरूरत नहीं वो आकर्षण मिट जाते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। यही है आज के भागवत का ये संदेश संक्षेप में। ये कथा नारद मुनि प्रचिना भरिष्यत, बहुत धार्मिक राजा था लेकिन थोड़ा सा अज्ञान मालूम नहीं था, इसलिए वो बता रहे हैं बाबा देख जो तुम कर रहे हो इसे बाहर नहीं आओगे, तुम सिर्फ बद्ध रहोगे, अगर बाहर आना है तो ऐसे जगह पे जाओ, ऐसे संग करो। वही कपिल भी बताते हैं, प्रहलाद भी बताते हैं और आज नारद मुनि बताते हैं, और पूरे शास्त्र में कितने जगहों पे बार बार यही विषय आता है कि कैसे श्रवण करना सबसे बड़ा एक चेतना को शुद्ध करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो आप लोग सब दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे संडे के दिन, तो मैं आप सभी का धन्यवाद, और इस तरह कथा के लिए सुनिश्चित समय निकाल कर आइए। हमेशा तो नहीं आ सकते हैं तो, लेकिन घर में इस तरह का एक वातावरण बनाइए, संग बनाइए और नियमित इस तरह कथा सुन के आएंगे तो हम जीवन का जो भी एक अवसर है उसमें कहीं सही दिशा में हम आगे जा रहे हैं, एक कदम भी आगे बढ़ेंगे लेकिन सही दिशा में जा रहे हैं, ही हमारा सार्थक जीवन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पुराण की हरे कृष्ण जय प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंटिव हियरिंग।